ओम शांति। सभी कहे एक साथ फिर से ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा तू कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर ले, तू हो जा मन में मगन। ये शब्द थे इस गीत के जो अभी अभी बज रहा था, राजयोग क्या है, इन्हीं शब्दों में इसकी परिभाषा समाई हुई है। ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा का मिलन, तो योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन, और राजयोग अर्थात उस ऊंचे से ऊंचे सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा से आत्मा का मिलन। और यह मिलन कैसे संभव होता है, उसके लिए कौन सी ऊर्जा काम करती है, वह ऊर्जा है मन। वैसे भी हम मिलन का अनुभव जब भी करते हैं तो कोई न कोई ऊर्जा का उपयोग होता है उस समय। जैसे ये भी एक मिलन है, हम एक दो को देख पा रहे हैं, आप हमारे शब्द सुन पा रहे हैं, तो ये मिलन कैसे अनुभव हो रहा है, बिजली के सहयोग से। लाइट जल रही है, माइक चल रहा है और हम मिलन का अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन परमात्मा से मिलन का अनुभव कौन सी ऊर्जा कराती है, वो ऊर्जा है मन की शक्ति। इसीलिए भगवान के महावाक्य हैं कि इस मन को मेरे में लगाओ। भगवान यही हम अर्जुन को कह रहे हैं, अब जो ओटे सो अर्जुन, जो अर्जुन करे वो अर्जुन। हम सब भी अर्जुन हैं और परमात्मा हम सबके प्रति यही आदेश देते हैं कि अपने मन को मेरे में लगाओ। लेकिन जिस प्रकार अर्जुन एक जिज्ञासु के रूप में था, प्रश्न पूछने वाला था, हे भगवान ये मन कैसे लगाएं? मन तो बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े के समान है जो बेलगाम होकर दौड़ता ही रहता है। हे प्रभु ये मन लगता नहीं ईश्वर में। फिर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अनेक यत्न करते हुए भी ये शिकायत बनी रहती है। और वह गीत याद आता है, चारों धाम लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो क्यों ये शिकायत है और भगवान ने ये शिकायत अर्जुन की दूर की? क्या कहा, हे अर्जुन वैराग्य और अभ्यास ये दो कदम हैं इस मन को मुझ में लगाने के लिए। तो जब लोग ये सुनते हैं वैराग्य तो समझते हैं शायद इसके लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, और योगी कौन होते हैं, केवल सन्यासी ही होते हैं। हम तो गृहस्थी लोग हैं, हम कैसे योगी बन सकते हैं। लेकिन अर्जुन भी तो गृहस्थी ही था, कर्तव्य का बोध उसे भगवान ने कराया, मैदान छोड़कर भागने की प्रेरणा नहीं दी। तो कर्तव्य परायण भी बनना है, जिम्मेदारियों का पालन भी करना है, पर सब कुछ करते हुए मन प्रभु में लगाना है। ये राजयोगी की स्थिति है, जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ स्थिति। संसार में हम रहें पर संसार हमारे अंदर न रहे, नाव पानी पर रहे पर पानी नाव में न रहे। नाव पानी पर होगी तो पार हो जाएगी, लेकिन इस शर्त पर कि पानी नाव में न आ जाए। और अगर नाव में पानी आ गया तो क्या होगा, डूब जाएगी। तो संसार में हम रहे पर संसार हमारे में न रहे, ये वास्तव में वैराग्य का अर्थ है। क्योंकि जब भी हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो ये शिकायत क्यों बनी रहती है कि मन भटकता है, मन चंचल है? क्योंकि व्यक्ति वस्तु वैभव घटना स्थान परिस्थिति न जाने क्या क्या विचार मन में आते रहते हैं, और उसका कारण क्या है, हम अपने आप को ये देह समझ रहे हैं। मैं एक नारी हूं, एक माँ हूं, तो क्या होगा, मेरे बच्चे ही याद आएंगे। मैं एक बिजनेसमैन हूं तो कौन याद आएगा, ग्राहक याद आएंगे। मैं एक वकील हूं तो जो क्लाइंट है वही याद आएंगे। एक डॉक्टर हूं तो पेशेंट याद आएंगे, दवाइयां याद आएंगी, बीमारियां याद आएंगी। लेकिन मैं एक आत्मा हूं ये निश्चय करेंगे तो कौन याद आएगा, परमात्मा। इसीलिए कहावत है कि इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। आत्म अनुभूति ही हमें परमात्मा अनुभूति की ओर ले जाएगी, क्योंकि परमात्मा का संबंध आत्मा के साथ है। हम आत्मा के रूप में कहते हैं कि हम भगवान के घर से आए हैं और भगवान के घर जाना है, यही कहते हैं ना। शरीर के हिसाब से थोड़ी कहते हैं भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। शरीर तो भगवान के घर से आया नहीं है, आया है क्या, वो कहां से आया है? पंच तत्वों का पुतला है तो पंच तत्वों से ही आया है, और पंच तत्वों में मिल जाएगा, इसलिए वो तो मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वो एक कबीर का दोहा है ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो ये माटी कुम्हार को क्यों कहती है, क्योंकि शरीर मिट्टी का बना हुआ है, पंच तत्वों का बना हुआ है, तो एक दिन मिट्टी उसको रौंद देगी, लेकिन आत्मा को नहीं रौंद सकती है। आत्मा को आग नहीं जला सकती है, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। अर्थात प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन ये जब निश्चय हो और मैं वो आत्मा हूं जो इस शरीर से न्यारी हूं, इस निश्चय से ही मन परमात्मा में लगेगा, क्योंकि आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा से है। प्रार्थना में जब त्वमेव माता च पिता कहते हैं तो ये आत्मा कहती है, शरीर थोड़ी कहता है। शरीर के तो माता पिता है, बंधु सखा सब है, अलग अलग है। माँ अलग होगी, पिता अलग होगा, बंधु अलग होगा, सखा अलग होगा, लेकिन परमात्मा के साथ आत्मा के सर्व संबंध है। और वो भी हर जन्म में उसे ही हमने त्वमेव माता च पिता कहा है। देहधारियों के साथ जो संबंध होंगे वो एक जन्म के होंगे। चलो कोई आत्मा वापस हमारे घर में आ जाए दूसरे नाम रूप से, लेकिन संबंध तो बदल जाएगा ना, वही तो संबंध नहीं रहेगा। चलो वो भी संबंध रहे पर आयु तो बदल जाएगी ना, कि वही आयु रहेगी। इसलिए जो भी देहधारियों से संबंध है वो तो कर्मों अनुसार संबंध है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया तो संबंध भी पूरा हो गया। लेकिन परमात्मा के साथ जो आत्मा का संबंध है ये कर्मों अनुसार नहीं है, लेकिन परमात्मा के कर्तव्यों अनुसार संबंध है। माँ का, पिता का, बंधु का, सखा का, स्वामी का, सतगुरु का, साजन का, आत्मा का वो साजन भी है, आत्मा सजनी है। तो सर्व संबंधों का कर्तव्य परमात्मा ने निभाया है, इसलिए आत्मा उसको याद करती है सर्व संबंध से। अब जिसके साथ सर्व संबंध है उसके लिए ये शिकायत कि मन नहीं लगता, और जिसके साथ एक संबंध है केवल उसमें तो इतना मन लग जाता है जो हटता ही नहीं है। सोचो एक संबंध किसके साथ है, मानो माँ बेटे का संबंध है, अब बेटा कहीं विदेश गया या चलो संसार से चला गया, संबंध इतना ही था, लेकिन उसको माँ भूल नहीं सकती। कितना भी उसे कहा जा भी भूल जाओ वापस तो आएगा नहीं, इतना ही हिसाब किताब था, पर माँ कहेगी कैसे भूलूं। तो एक जिससे एक संबंध है उनको भूल ही नहीं पाते, और जिससे सर्व संबंध है उसको याद ही नहीं कर पाते। देखो कैसी विडंबना है। तो क्यों नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा कौन है यही पता नहीं था। जैसे एक कुमारी है अभी तक सगाई हुई नहीं, अनेक लड़के माँ बाप ढूंढ रहे हैं कौन लड़का इसके काबिल होगा, अभी ढूंढ ही रहे हैं, तो कौन उसका जीवन साथी बनेगा अब उस कुमारी को कन्या को पता ही नहीं है, तो मन किसने लगाए पता ही नहीं है। पर जिस समय पसंद आ गया और सगाई हो गई, फिर क्या होता है, है माताएं क्या होता है, बस यही मेरा जीवन साथी है, मन उसमें लग गया, पता है, संबंध जुड़ गया। तो परमात्मा के साथ आत्मा का जन्म जन्म का संबंध, लेकिन फिर भी ये शिकायत क्योंकि संबंध कहीं टूट गया है, अब उसको जोड़ने की फिर से जरूरत है। जैसे अभी बिजली जल रही है, कूलर चल रहा है, माइक चल रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या कारण होगा, ढूंढेंगे कारण, कोई कहेगा भाई बिजली नहीं है पर दूसरे हॉल में है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो क्या कारण होगा, कि इस हॉल का जो मीटर है उसमें जो फ्यूज है वो उड़ गया है, तो जरूरत है उस फ्यूज को ठीक करने की, तब फिर से वही लाइट आएगी। तो हम देखें कि कहां हमारा कनेक्शन कट गया है और क्या कारण है। कनेक्शन जब कट जाता है तो रबर बीच में आ जाता है, तो रबर एक इंसुलेटर है, एक विघ्न है, वो करंट को पास होने नहीं देता है। तो जब फ्यूज वायर जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, तार से जो रबर है ना ऊपर का वो हटाना पड़ता है, और जो तांबा धातु है उसको तांबे के साथ जोड़ना पड़ता है, और जब तांबे को तांबे से जोड़ेंगे तब करंट पास होगा। इसी प्रकार मान लो हम रेडियो ऑन करते हैं और हमें कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, पर कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सा मीटर बैंड कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही सारा दिन सुई घुमाते रहो, हमें रेडियो स्टेशन नहीं मिलेगा। और जिस समय पता चला तो बस वही सुई रखो, आवाज अपने आप आएगा। अब परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, ये पता ही नहीं था। या तो हम समझ रहे थे परमात्मा तो इतना ऊंचा है सातवें आसमान में कहीं रहने वाला है और मैं तो नीच हूँ, इस संसार का एक प्राणी मात्र हूँ, तुच्छ हूँ। अब वो इतना ऊंचा, मैं इतना नीच, संबंध तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन राजयोग से हमें पता चला कि वो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूँ, कितना नजदीक का संबंध है। कोई सोचे परमात्मा तो बहुत पावन है और मैं तो पतित हूँ। मंदिर में जाकर आरती में भी हम यही कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी। तो मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, निर्बल हूँ, न जाने क्या क्या अपने लिए कहते हैं। फिर कहेंगे आप मुझ पर दया करो, कृपा करो, रहम करो, माफ करो, शक्ति दो, मांगते ही रहते हैं भिखारी बन करके। तो वो इतना ऊंचा और मैं इतना नीच, संबंध ही क्या होगा? कोई संबंध नहीं, ऊंचा और नीच में क्या संबंध होगा? इसलिए संबंध हमारा इतना श्रेष्ठ है कि हम भी इतने ही ऊंचे हैं, हम कोई कम हैं क्या? परमात्मा अगर शांति का सागर है तो आत्मा शांत स्वरूप है, वो सर्वशक्तिमान है, तो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। ये हमें समझ मिली है, ये ज्ञान मिला हमें। तो क्या हुआ है कि हम तीन प्रकार का अज्ञान व्यक्त कर रहे थे, इसलिए ईश्वर से दूर थे, तीन प्रकार का अज्ञान। और इस अज्ञान के कारण परमात्मा का हमें अनुभव नहीं हो रहा था। एक अज्ञान है सांसारिक, जो भौतिक उपलब्धियां हैं उनका घमंड। इंसान को आज इतना है, वो ईश्वर का क्या अनुभव करेगा? मन उसी में रमण करेगा, दिन भर मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा यही करता रहेगा, ईश्वर का याद आएगा? या तो इतना अभिमान और या तो इतनी हीनता कि मेरे जैसा नीच इस दुनिया में कोई नहीं है। अब इतना हीन भी ईश्वर से कैसे मिल सकेगा, शक्तिहीन हो गया। तो या तो बिल्कुल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं एकदम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या तो फिर कई लोग समझते मैं ही भगवान हूँ। ये भी एक अज्ञान है, मैं ही भगवान हूँ, फिर भगवान को याद क्यों कर रहा हूँ? मैं ही भगवान हूँ तो मुझे अज्ञान कैसे होगा? भगवान को अज्ञान होता है क्या? अगर भगवान को भी अज्ञान हो जाए तो ज्ञान कौन देगा? सोचने की बात है ना। मैं ही भगवान हूँ परंतु अज्ञानवश मैं भूल गया मैं भगवान, तो भगवान को ही अज्ञान हो गया तो खत्म बात, वही बात पूरी हो जाएगी। लेकिन परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, वो कभी नहीं भूलता अपने आप को। पर मैं आत्मा जरूर अपने आप को भूल जाती हूँ, क्योंकि आत्मा इस चक्र में आती है, परमात्मा चक्र में नहीं आते। इसलिए उनको क्या कहते, अकर्ता अभोक्ता। ये अकर्ता अभोक्ता जो ईश्वर की महिमा है, इससे सिद्ध है वो चक्र में नहीं आते। आत्मा तो चक्र में आती है, आपको दिन में ये सब बताया गया है। अब जब ये अंतर का भी पता चला और समानता का भी पता चला तो मन लगना सहज होना चाहिए, क्योंकि कुछ कई समानताएं हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में, पर अंतर भी है। समानता क्या है? जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप ही है, एक जैसा ही स्वरूप है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण जम्मू में हमने देखा। जम्मू के भाई बहने होंगे, पंजाब के अक्सर जम्मू जाते रहते हैं, वहाँ एक रघुनाथ मंदिर है, किसने देखा है? उस मंदिर में बहुत बड़ी विशेषता है, अनेक कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में पत्थर के स्लैब है, पत्थर के बहुत बड़े बड़े, और छोटे 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 वो नहीं जैसे निकले हुए उस पत्थर पर, पत्थर छोटे छोटे, और उनकी पूजा होती है। वो किसकी यादगार है? वो किसकी यादगार है? आत्मा की यादगार है। दीवारों पर अनेक मंदिर, अनेक मूर्तियां, 33 करोड़ देवी देवताएं होंगे, किसने गिनती की है? वो जो निकले हुए हैं पत्थर के स्लैब पर, वो भी अनेक होंगे, कोई कहते 9 लाख, कोई कहते 33 करोड़, और उन सब की पूजा होती है। हमने पूछा कैसे पूजा करते हैं आप इन सब की, तो कहते हैं बस वो चंदन ले लिया, छिड़क दिया, और क्या करेंगे, एक 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 करोड़ों को बैठ कर देंगे क्या तिलम। फिर पानी का पाइप ले लिया, हो गई धुलाई हो गई पानी के पाइप से और क्या करेंगे। तो ये सब आत्माएं हैं, उनकी पूजा होती है। अब वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, पर पूजा कैसे करें, इसीलिए आत्मा की पूजा शालिग्राम नाम से होती है। जितने भी नर नारायण का मंदिर, विष्णु का मंदिर, श्री राम का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर, इन सब में शालिग्राम भी रखे हुए होते हैं। ये आत्मा की यादगार है। और उसी मंदिर के ही पास बगल में एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, देखा ना, जो उस रघुनाथ मंदिर में जाते हैं वो शिव के मंदिर में भी जरूर जाते हैं, एक ही बड़ा शिवलिंग। अब वो किसकी यादगार है, वो परमात्मा की यादगार है। तो आत्माएं अनेक और परमात्मा एक, परंतु दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है, परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है। कई कहते हैं अगर वो है तो दिखाई क्यों नहीं देते, पर कैसे देख सकते हैं, ये आंखें तो चर्म चक्षु है, ये चर्म चक्षु केवल प्राकृतिक चीज ही देख सकती है, वो भी सब नहीं। और आत्मा और परमात्मा प्राकृतिक स्वरूप है ही नहीं, इसलिए कई लोग फिर परमात्मा की क्या व्याख्या करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेमलेस, फॉर्मलेस, टेस्टलेस, लेसलेस, लेस, न नाम न रूप न गुण न कुछ नहीं, तो बाकी जो बचे ना वो ईश्वर। हम कहते हैं ये परिभाषा गलत है, जो बाकी बचे वो ईश्वर, उसका स्वरूप प्रकृति से ही प्यारा है। इसलिए जो भी अलग हम कहते नाम रूप आदि, ये प्रकृति के साथ संबंधित है। आत्मा और परमात्मा प्राकृतिक है ही नहीं, प्रकृति से ऊपर भी कोई शक्ति है, ये विज्ञान नहीं समझ पाएगा। इसलिए प्रकृति के ऊपर की शक्ति को हम कहते हैं मेटाफिजिक्स, बाकी फिजिक्स। अब उस शक्ति का ज्ञान हमें परमात्मा ही दे सकता है, प्रकृति अपने लिए नहीं है, प्रकृति अपने उपभोग के लिए नहीं है, है ना? नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाता, मनुष्य के लिए है, प्राणी के लिए है। इसी प्रकार हम आत्माएं जो पुरुष है, वो प्रकृति और पुरुष के साथ संबंध है, खेल है दो के बीच में, और परम पुरुष परमात्मा वो दोनों से न्यारा है। इसीलिए परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, तुम्हारी गत मत तो ही जान, ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है। अगर आत्मा का साक्षात्कार हो या परमात्मा का हो, ये तुरंत पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों ही ज्योति स्वरूप है, पर ये आंखें नहीं देख सकती है, साक्षात्कार कर सकते, दिव्य दृष्टि से हम अनुभव करते हैं। अब वो दिव्य दृष्टि का दाता स्वयं परमात्मा है, मनुष्य नहीं दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो स्वरूप भी एक जैसा है, पर पूजा के लिए अलग अलग साइज बनाई जाती है। कहां शिवलिंग आप देखेंगे इतना बड़ा होता है, पशुपति नाथ जाइए इतना बड़ा शिवलिंग है, और कहां इतने छोटे छोटे शिवलिंग भी होते हैं। तो साइज भले कैसी भी हो जिसकी पूजा होती है, परंतु परमात्मा का स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। जिस प्रकार आपका पासपोर्ट फोटो या ये छोटा फोटो, बड़ा फोटो, वॉल साइज फोटो, कई फोटो निकाल सकते हैं आप, अपने लेंथ हाइट कैसी भी बना लो, पर आपकी हाइट थोड़ी बदली होगी, आपकी आपका जो लंबाई है वो थोड़ी बदली होगी, बोले फोटो आप कैसे भी निकलवाओ। इसी प्रकार परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, आत्मा भी ज्योति स्वरूप। अब ये समानता लानी होगी चिंतन में, तब फिर से कनेक्शन जुड़ेगा। जैसे एक कुमार और कुमारी की सगाई करानी है, मानो संबंध जोड़ना है, तो माता पिता क्या करते हैं, दोनों की जन्म पत्री ज्योतिषी के पास ले जाते हैं। भारत की संस्कृति में तो यही है ना। फिर कहेंगे जरा देखो भाई योग है, कहते योग है, तो ज्योतिषी क्या करता है, उनकी कुंडली मिलाने की कोशिश करता है। ग्रह, संस्कार, स्वभाव, कई बातें हैं, वो ज्योतिष विद्या की भाषा है। और उसमें अगर मेल होता है, मैचिंग होता है, तो कहेंगे योग है। और अगर मैच नहीं करते, टक्कर खाते हैं ग्रह, तो क्या कहेंगे, तो योग नहीं है, ये संबंध चलेगा नहीं। तो लेकिन संबंध करना ही है हर हालत में, तो कहेंगे इतना इतना त्याग करो, इतना इतना पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, त्याग, इतना दान करो, ये करो, यानी इसके पीछे भाव क्या है, त्याग चाहिए, तभी संबंध होगा, तभी वो ग्रह शांत होंगे। यानी मैचिंग, इसको योग कहते हैं, मिलन, मिलन के लिए समानता चाहिए। प्रकृति के अंदर हम देखते हैं जहां विरोधाभास है वहां आकर्षण है प्रकृति में। जैसे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, आप मैग्नेट लेते हैं ना, चुंबक, चुंबक में हम कई बार देखते हैं अगर नॉर्थ और साउथ को मिलाएंगे एकदम से चिपक जाएंगे, पर नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाने की कोशिश करो तो क्या होगा, वो दूर होते जाएंगे क्योंकि वो रिपेल होते हैं। पर नॉर्थ को साउथ से मिलाओ एकदम से चिपक जाएंगे, हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, अपने आप मिल जाएंगे। तो प्रकृति के अंदर जो नॉर्थ और साउथ है, उत्तर दक्षिण, उसका उसका मेल होता है, लेकिन आध्यात्मिकता में समानता का मेल होता है। समान विचार, समान संस्कार, समान स्वभाव, और अगर अंतर है ना तो टक्कर होगा। पति पत्नी है, भले संबंध तो जुड़ गया पर टक्कर ही खाते, रोज झगड़ते हैं, क्योंकि पति के विचार अपने, पत्नी के अपने, तो झगड़ा ही करेंगे, लड़ते ही रहेंगे। परंतु उसके लिए अगर एक थोड़ा त्याग कर ले और ये समझ जाए कि नहीं मुझे इनके आधार पर चलना है, तो झगड़ा खत्म। एक कहा जाता है, हम लोग दादी प्रकाशमणि सदा ही कहते, हारमनी, इंग्लिश में हारमनी शब्द है, माना समरसता, उसको अगर हिंदी के साथ जोड़ो, हार मानी झगड़ा टूटा। पर हार मानने को तैयार नहीं है, मैं कोई कम हूं क्या, तो क्या होता है, झगड़ा बढ़ जाता है। तो परमात्मा से मिलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि या तो अतिहीनता या तो अति अभिमान, या तो मैं ही भगवान, तीनों ही अज्ञान। लेकिन हाँ, समानता है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, एक ही जैसा स्वरूप है। दूसरा, एक जैसे ही गुण है, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है, इसीलिए कहने में आता है आत्मा परमात्मा का अंश है, यही कहते हैं ना। लेकिन अंश शब्द का अर्थ गलत ले लिया है, क्या समझते हैं कि अंश का मतलब एक टुकड़ा, वो टुकड़ा निकला फिर टुकड़ा वो जाके मिला, जैसे सागर से बुदबुदा निकला फिर सागर में जाके वो बुदबुदा मिल गया, इस प्रकार से आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं है। वो बुदबुदा जो मिल गया तो अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा उस बुदबुदे का, लेकिन आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, वो तो अनादि अविनाशी है। तो इसीलिए हम जब अंश कहते हैं तो हमारा अभिप्राय गुणवत्ता वही है, परंतु संख्या में अंतर जरूर है। संख्या में अंतर का भाव है कि जो ईश्वर के गुण है वो तो सागर समान है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, जितनी महिमा करो उतनी कम, सागर से भेंट किया की गई है महिमा, क्योंकि सागर बेअंत है। और आत्मा के लिए क्या कहेंगे, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वरूप और वो सागर, जैसे बूंद और सागर। अब मैं स्वरूप भूल जाती हूँ, जैसे बुदबुदा तो उड़ जाएगा, बाफ बन जाएगा, सागर तो था है, तो मैं आत्मा खुद को भूल जाती हूँ, लेकिन अब याद कौन दिलाए, वही याद दिलाएगा जो सदा ही स्थिर है, एक रस है। आत्मा खुद को भूल जाती है, ये भूल भुलैया का खेल है। लखनऊ में एक भूल भुलैया का मकान है, उसको भूल भुलैया कहते हैं। मालूम है, देखा है किसने? देखा है, देखा होगा उस मकान। वो बड़ी हवे बिल्डिंग है, अंदर में चले जाओ आप, बाहर अपने आप नहीं निकल सकते हो जब तक कोई गाइड न मिले। जैसे लगेगा बस यहाँ दरवाजा आएगा, पर गए तो फिर दीवार आ गई, फिर लगेगा यहाँ आएगा, फिर दीवार आ गई, पता ही नहीं चलेगा कैसे बाहर निकले, अंदर ही अंदर भूल भुलैया। तो इस संसार के अंदर भी हम ऐसे फंस गए भूल भुलैये में, तभी तो परमात्मा को हम पुकारते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हमें अभी पार करो, मुक्त करो। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? खेवैया, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर। ये महाकालेश्वर का भी अर्थ क्या है? वो महाकाल है, सबको इस देह से मुक्त करके वापस घर ले जाने वाला, मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाला। तो परमात्मा का कर्तव्य ही सबसे न्यारा है, उनके गुण जो है आत्मा के भी वही गुण है, लेकिन अंश रूप में। इसलिए हम ये न कहूं हे प्रभु मुझे शांति दो, नहीं, शांति तो मेरा भी स्वभाव है, परंतु मैं शांति को अधिकार रूप में प्राप्त कर सकती हूँ। कैसे? शिव पिता आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, ये चेतना जागृत करते हैं, अपने अंदर की आत्मा अनुभूति को प्रकट करते हैं, आत्मा अपने मूल गुणों को पहचानने लगती है। जो जैसे इस समय सोई हुई है, जैसे बहुत बलशाली व्यक्ति, बहुत बल है उसमें, ताकत है, रेसलर है, बहुत मसल्स है, वो तो किसी को भी एक ठोंसे से गिरा सकता है, पर जिस समय वो सोया हुआ है उस समय तो उसकी शक्ति भी जागृत है या सोई हुई है? सोई हुई है। अगर उसको उसी समय कोई नींद में एक बलशाली व्यक्ति को गोली मार दे, बेचारे को पता भी नहीं चलेगा, तो सोया हुआ है। इसलिए कई लोग ना वो चाहे सोए हुए मार डालते हैं। देखो सामने आमने सामने बल वाले दोनों आए तो पता चले दूसरे के बल का भी, लेकिन वो इतना बलशाली व्यक्ति भी जब सोया है तो उसकी शक्ति भी सोई हुई है। अब आत्मा भी इतनी शक्ति रूप है, पर वो शक्ति सोई हुई है। हम भूल गए हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। अभी याद कौन दिलाए? जैसे हनुमान के लिए बताते हैं कि उसके अंदर बहुत शक्ति थी, लेकिन उसको साथ साथ ये भी कहा गया था कि तुमको जब तक वो याद न दिलाए तब तक तुम्हें याद नहीं होगा। तो याद दिलाने वाला कोई चाहिए, तो आत्मा को भी याद दिलाए कौन? वो जो जिसको सदा ही याद है, सदा ही वो स्मृति है उनको, वो तो एक परमात्मा ही है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? जागती ज्योति। परमात्मा को जागती ज्योति कहते हैं, परम ज्योति कहते हैं, आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो गुणों में भी समानता है, तीसरी बात धाम में भी समानता, एक ही घर है। जो पिता का घर होगा वही तो बच्चों का घर होगा। बाद में बच्चा बड़ा हो गया तो जाके अपना घर बसाता है, लेकिन जब बच्चा है तो माता पिता का घर ही तो उसका घर होगा या कि दूसरा घर होगा? तो जो परमात्मा का घर है, आत्माओं का भी तो वही घर है ना, हम भी उसी घर के ही वासी हैं। इसीलिए जब दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं? हे भगवान उठा लो इस संसार से, नहीं जीना मुझे, बहुत दुखी हो गया हूँ, उठा लो। ये आत्मा क्यों पुकारती है? क्योंकि आत्मा को अपना घर याद आता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे सफर पर मानो गया हुआ है, एक महीने का टूर है, बहुत लंबा सफर है, एक महीना कोई कम नहीं होता है, रोज अलग जगह, रोज अलग खाना, रोज अलग बिस्तर, ट्रेवलिंग ही ट्रेवलिंग, इतना थक जाता है वो, कोई सोचेगा कब मैं घर पहुंचूं तो चैन की सांस लूं। 15 दिन के बाद वो गिनती करना शुरू कर देगा, अभी 14 दिन, अब 13 दिन, अब 12 दिन, अब 2 दिन, 1 दिन, बस कल घर पहुंचूंगा। तो आत्मा भी अपना घर याद करती है। जो आत्माओं का धाम है मुक्ति धाम, वहाँ आत्माएं शांति का जो अनुभव करती है वो आत्मा को याद आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होम सिक। लेकिन राजयोग कहता है कि ऐसे भगवान को पुकार करके दुखी मन से चिल्लाओ नहीं, हे भगवान बस उठा लो नहीं जीना, इसके बजाय मन से चले जाओ अपने घर में। मन से घर में पहुंचने में कितनी देर लगेगी? अब आप यहाँ अमृतसर से आए हो, जलंधर से आए हो, इंदौर से, जहाँ से भी आए हो, मन से उस घर में जहाँ आप रहते हो उस घर को याद करने में या जाने में मन से कितनी देर लगेगी? कितनी देर? एक सेकंड सोचा और पहुंच गए। माताएं तो किचन में पहुंच जाएगी ना? क्या खाना बन रहा होगा, अभी सुगंध भी आने लगेगी, बेटी खाना पका रही है या जो भी होगा। मानो कि एक सेकंड लगा मन को पहुंचने में, इसी प्रकार एक सेकंड में मन और बुद्धि की ऐसी उड़ान भर जाए जो हम आत्माएं उस परम धाम में पहुंच जाए और क्या महसूस करें, अखंड ज्योति का एक महतत्व, जिस महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा अपने पिता परमात्मा के सामने विराजमान हूं। कई कहते कैसे हम ये सोचे, हमने वो घर तो देखा नहीं है, ये घर तो देखा है हमने, पर ये घर देखा नहीं है। हम कहते क्यों नहीं देखा है, भूल गए हो। कई बार भूल भी तो जाते हैं ना, जैसे बच्चे को माँ याद दिलाती है, बच्चे का मतलब एल्बम है, वो बच्चा 4-5 साल का हो गया है तो समझदार हुआ है, तो जब 6 महीने का था, 1 साल का था, 1.5 साल का था, वो तो याद कहाँ है बच्चे को। फोटो जरूर है तो फोटो दिखाएगी, माँ बेटा तुम यहाँ पैदा हुए थे, ये तुम्हारा घर था, गाँव में पैदा हुए थे। कहेगा अच्छा, अब बच्चे को तो याद नहीं है, तो कौन याद दिलाता है उनको? माँ याद दिलाते, पिता याद दिलाते। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया है कि हे आत्माएं, तुम इनडायरेक्टली उस घर को याद करते हो। जब हम शांति शांति पुकारते हैं, उठा लो, तो मन उस घर को याद कर रहे हैं। मुक्ति मोक्ष की कामना करते हैं, इसका मतलब क्या है? उसी घर को याद करते हैं ना। मुक्ति मोक्ष कहाँ मिलता है? उसी घर में। तो आत्मा ऐसे चिल्लाने की बजाय जब ये निश्चय हो गया कि वही मेरा घर है, तो मन बुद्धि से पहुंच जाओ अपने घर में। जाने लिए आपको निमंत्रण थोड़ी चाहिए, अपने घर में जाने लिए आपको निमंत्रण पत्र चाहिए क्या? तभी घर पहुंच सकेंगे, आपका तो अधिकार है। लेकिन वो अधिकार हम तब महसूस करें जब हमें ये पता हो कि वो हमारा असली घर है। ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, 2 दिन के मेहमान हैं हम इस संसार में। आत्मा एक पंछी है और परदेसी है। पंछी और परदेसी का एक स्थान इस संसार में नहीं हो सकता। पंछी का बसेरा तो आकाश है और परदेसी का तो अपना देश है, उसको वापस जाना है अपने देश में। तो जब ये हमें निश्चय हो जाए तो मन बुद्धि से एक सेकंड में उस धाम में चले जा सकते। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, एक जैसा ही स्वरूप है, एक जैसे ही गुण है, गुणवत्ता वही है, एक ही घर है। अब ये जैसे ही पता चला तो आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ सकता है। तो राजयोग का आधार क्या है, उसकी विधि क्या है? कई समझते बस हमको कोई मंत्र मिल जाए और हम मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ही सही यही बोलते रहे। लेकिन यहाँ पर उस रूप से आपको मंत्र नहीं मिलेगा जिसका आप जाप करें, क्योंकि हम मानते हैं कि मान लीजिए कोई शब्द आपको दिया कि आप इसका जाप कीजिए 1,00,000 बार, कोई भी शब्द दिया। अब 1,00,000 बार आप जाप कीजिए तो क्या होगा परिणाम? 1,00,000 की गिनती तो बहुत लंबी होती है, 100,000 होता है 1,00,000 में। तो आप वो जाप करते जाएंगे और गिनती करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि गिनती तो लंबी है, तो 100, 200, 500, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000। तो योग किसके साथ हुआ? योग माने संबंध। योग किसके साथ होता है? गिनती के साथ हो जाता है, ईश्वर के साथ नहीं होता है। मान लीजिए आपको ओम नमो शिवाय का मंत्र दिया और कहा कि आप इसका जाप कीजिए, रात को 1,00,000 बार दिन भर में ये जाप करना ओम नमो शिवाय, तो दिन भर में जब टाइम मिलेगा आप ओम नमो शिवाय कहेंगे, फिर लिखते रहेंगे इतना हुआ, इतना हजार हुआ, इतना हजार हुआ। तो शिव से योग लगा क्या? किससे योग लगा? गिनती से। ओम नमो शिवाय माना मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, ये सिंपल सा इसका अर्थ है। अब शिव को नमस्कार करने वाला मैं कौन? अगर ये ज्ञानी नहीं है, ये देह अभिमान में मैं फंसा हुआ हूँ, तो शिव को नमस्कार कैसे कर सकता हूँ? नमस्कार करने लिए तो नमः करना माना एक नम्रता चाहिए, तभी नमः होता है, झुकना होता है, और अभिमान में खड़ा ओम नमः शिवाय को मंत्र हुआ क्या जाप? नम्रता चाहिए। तो शिव को नमस्कार करने वाला पहले मैं एक आत्मा हूँ, ये ज्ञान चाहिए। फिर जिस शिव को मैं नमस्कार कर रहा हूँ वो शिव का परिचय चाहिए, फिर उससे मेरा क्या संबंध है वो हमें समझ चाहिए। तो ये कुछ आधार है मन को परमात्मा में लगाने के लिए, और मन सूक्ष्म है, और जो हम आधार लेते आए हैं वो स्थूल है। तो सूक्ष्म मन उन स्थूल आधारों पर कैसे टिकेगा? जैसे मान लीजिए मंत्र का आधार है जो मुख का काम है, हाथ में माला रखी और मणके फिरा रहे हैं तो अंगुलियों को काम दे रहे हैं, तो अंगुलियों को काम दे रहे हैं, मुख को काम दे रहे हैं। फिर सामने कोई मूर्ति रखी, चलो आंखों को काम दे रहे हैं, पर मन को तो काम ही नहीं दे रहे हैं। तो मन क्या करेगा? वो तो बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा। तो मन तो तब लगे जब जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उससे प्रीत हो, उनसे संबंध हो, नहीं तो टाइम पास ही केवल कहेंगे, क्या कहेंगे आप? इसीलिए मन को काम चाहिए। तो मन को हम कैसे काम देंगे? मन कहाँ कहाँ जाता है कभी ये सोचा है? चाहे हम कितना भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन मन को कहीं भी जाने के लिए कुछ आधार होता है, बिना आधार के मन कहीं ऐसे नहीं जाता है। अब दुनिया में करोड़ों इंसान है, क्या सब में मन जाता है? क्या वो जाता है? कितनी घटनाएं रोज घट रही है, मन जाता है क्या? कहाँ जाएगा, पता ही नहीं। दो दिन से अखबार नहीं पढ़ी, टीवी नहीं देखी, रेडियो की न्यूज नहीं सुनी, अभी आज दुनिया में क्या हुआ कुछ पता है? पता ही नहीं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसे ही कहते ना, कोई समाचार नहीं माना ठीक ही होगा, दुनिया का विनाश नहीं हुआ है, सब ठीक ही है। तो इसीलिए समाचार ही नहीं होगा तो मन जाएगा ही नहीं, पर थोड़ा सा समाचार मिला कि एक दुर्घटना हो गई, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कहीं प्लेन एक्सीडेंट हुआ, कोई भूकंप आया, ये हुआ, तुरंत जाएगा, हमारा तो कोई नहीं था वहां, आएगा ना विचार। तो मन कब जाएगा? जब पहले कुछ सूचना मिले। फिर दूसरा, मन कब जाएगा? जब कोई संबंध होगा। तो मन के जाने के लिए सूक्ष्म आधार चाहिए, स्थूल आधार से नहीं काम चलेगा। इसीलिए कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है, कर का मन का फेरत युग भया, पर फिरा न मन का फेर। अब कर का मन का छोड़कर क्या करो? मन का फेर। मन का है, कर का कर माना हाथ, हाथ के मन के फेरने की बात नहीं है। तो मन का कैसे फिरता है, उसके लिए क्या चिंतन करे? ये चिंतन वास्तव में वही मंत्र है। मंत्र शब्द की परिभाषा पता है क्या है? मंत्र शब्द कहाँ से आया? मंत्रणा से, और मंत्रणा माना कोई राय सलाह। अब बुद्धि के द्वारा मन को सलाह देनी है। क्या सलाह देनी है? तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है, ये चिंतन मन को देना है बुद्धि के द्वारा। अभी क्या है, मन इंद्रियों का गुलाम बन गया है और बुद्धि की आवाज को दबा चुका है, अंतरात्मा की आवाज दबी हुई है और इंद्रियां मालिक होके चल रही है, मन उनका मुरीद हो गया है। इंद्रियां जो डिमांड कर रही है मन उसको पूरा कर रहा है। फिर कहते करना ही पड़ेगा, मन को मारना तो है नहीं, क्योंकि इंद्रियों की डिमांड बहुत है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, अनेक रसे हैं इंद्रियों की। और बुद्धि की आवाज को दबा दिया है, बुद्धि तो तराजू की तरह है, वो तो निर्णय देती है, वो मूल्यों को महत्व देगी। जैसे तराजू वजन को महत्व देती है, तो सद्बुद्धि मूल्यों को महत्व देगी। जीवन के मूल्य वो बहुत ही कीमती है, जिससे जीवन अमूल्य बनता है। लेकिन अगर इंद्रियों को हमने मालिक बना दिया तो परिणाम क्या होगा, जीवन कौड़ी तुल्य बन जाएगा। इसलिए राजयोग के द्वारा फिर से बुद्धि को हम सतर्क करते हैं, सद्बुद्धि बनती है और वो बुद्धि मन को दिशा प्रदान करे। जैसे लगाम घोड़े का मालिक के हाथ में हो और घोड़ा नियंत्रण में आ जाएगा, तो मन बुद्धि के लगाम के नियंत्रण में हो और इंद्रियां मन के अंदर कंट्रोल में हो, तो ये गाड़ी जीवन की बहुत अच्छी चलेगी। तो राजयोग क्या करता है, इंद्रियों का राजा बनाता है, फिर मन का भी राजा बनाता है, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों की मालिक हूं। मन मेरी ही सोचने की शक्ति है और मेरे और मन के ऊपर बुद्धि की शक्ति है, जिस बुद्धि को मैंने ईश्वर के साथ जोड़ा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं बुद्धि योग, समझ करके परमात्मा से संबंध जोड़ रहे हैं। तो परमात्मा से वो शक्ति प्राप्त होती है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा के गुणों में खो जाती है। तो इसलिए कोई स्थूल मंत्र या माला या मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है। मन का ना ये अपना जो इनका गुरु है दादा लेखराज, इनको ब्रह्मा कहती इनको भगवान कहती, ये बिल्कुल गलत विचार है, ऐसी बात ही नहीं है। हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा को जो इस संस्था के स्थापक हैं, इनको गुरु भी नहीं कहते, भगवान तो बहुत दूर की बात है, वो तो कहते ही नहीं है, परमात्मा तो एक ही है, पर गुरु भी नहीं कहते। गुरु भी नहीं कहते का भाव है कि उसने ये ज्ञान नहीं दिया है, परंतु उनके द्वारा परमात्मा ने अपनी पहचान खुद ही दी है। आप कहेंगे कैसे दी, हम आपको कल बताएंगे ये कैसे भी, ये भी एक बहुत बड़ा एक विषय है, कैसे परमात्मा ने उनके द्वारा अपनी पहचान दी है। अब क्या पहचान दी वो आपको मिली, अब संबंध जोड़ने की विधि क्या है, ये जो तीन बातों की समानता है, रूप में समानता, गुणों में समानता, धाम की समानता, इस समानता का चिंतन जागृति भीतर से, ये चिंतन से जागृति आएगी और जैसे ही चिंतन किया मन लग जाएगा परमात्मा में, संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। फिर संबंध को कायम बनाने के लिए तीसरा आधार चाहिए, जैसे रिचार्जेबल बैटरी है उसमें अपनी चार्ज है, मोबाइल फोन यूज करते हैं लेकिन फोन यूज करते तो चार्ज खत्म हो जाती है बैटरी की, इसीलिए फिर से चार्जर के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, वो चार्जर को प्लग इन करना पड़ता है बिजली घर से, तो बिजली घर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे हमारी बैटरी फिर से चार्ज होती है। अब आत्मा अपने आप में बैटरी की तरह शक्ति है, लेकिन आज क्योंकि देह अभिमान आ गया, चार्ज खत्म होती गई, शक्तिहीन होते गए। अब जब ये पहचान मिली तो आत्मा को जागृति आई और परमात्मा की पहचान मिली कि वो तो मेरा परम पिता है, वो शांति का सागर है और मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, तो आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगी। ये चिंतन ही बैटरी चार्ज करेगा, इसलिए हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तीन बार शांति पाठ करने के अंत में तीन बार शांति कहते हैं। तो ओम शांति का मतलब क्या है, ओम शब्द में तीन अक्षर हैं, अ उ और म। ओम माना वही मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है। तो आत्मा का स्वभाव शांति है, शरीर का स्वभाव शांति नहीं है, शरीर प्रकृति है और प्रकृति का स्वभाव तो हलचल है, परिवर्तन है, क्षणे क्षणे परिवर्तन शरीर में होता ही रहता है, ये प्रकृति का स्वभाव है। ये दीवार लगती है कि स्थिर है, लेकिन क्षण ही क्षण परिवर्तन ही हो रहा है इस दीवार के अंदर भी। 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ये तो गिर जाएगी अपने आप, क्योंकि शक्ति खत्म हो जाएगी, परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए प्रकृति तो परिवर्तनशील है, हलचल है उसमें हर वक्त। विज्ञान की थियरी इसके अंदर आती, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स बदल वो घूमते ही रहते हैं। तो इसीलिए ये शरीर तो उस रूप में प्रकृति है, पर मैं आत्मा शांत स्वरूप। और शरीर को जितना चलाओ उतनी ऊर्जा बनेगी, क्योंकि परिवर्तन भले है लेकिन उसमें ऊर्जा तब बनेगी जब उसमें रिलीज हो। हम विज्ञान में पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कहते हैं E=mc2। हम साइंस में पढ़ते हैं आइंस्टीन थियरी, इतनी एनर्जी, मास इनटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकृति में ये एनर्जी है, वो तब एनर्जी बनती है जब उसको हम कर्म में लाते हैं। शरीर को जितना चलाते उतनी ताकत बनेगी, और मन को जितना शांत रखेंगे उतनी शक्ति जागृत होगी। लेकिन हम लोग क्या करते, उल्टा शरीर को काम ही नहीं देते, सारा दिन घर में या बैठे रहेंगे, गाड़ी में गाड़ी चलाएंगे, कंप्यूटर पर बैठे एक ही जगह, कंप्यूटर के लिए भी कहेंगे भाई हाथ हिलाते रहो हिलाते रहो, ऐसे ही बैठो नहीं, नहीं तो खून जम जाएगा, ये गठिया की बीमारी हो जाएगी, कई बातें, उसको चलाते रहना। परंतु उसको चलाते नहीं, और मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटकता है, इतना चलाते हैं जो टेंशन में आ जाते हैं, फिर उससे डिप्रेशन आ जाता है या तो हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि बहुत बहुत शक्ति यूज कर ली। अब आत्मा के लिए ये ज्ञान योग या राजयोग एक बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। कैसे, हम मन को उतना ही शांत रखते हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, फिर ओम शांति एक बार, फिर दूसरी बार शांति, मेरा जो घर है वो शांति का धाम है। तो मन बुद्धि चली जाए उस शांति के धाम में, अखंड ज्योति के महतत्व में मैं चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। इस प्रकृति के आकर्षण से बिल्कुल परे, स्वतंत्र, स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, लेकिन आज स्वतंत्रता के नाम पर हम परतंत्र ही होते जा रहे हैं, इंद्रियों के वश, ये परतंत्रता है, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र तब मानेंगे जब ये प्रकृति या तत्वों का, ये इंद्रियों के भी आकर्षण से आत्मा परे है। मैं मूल वतन में आत्मा अपने धाम में निवास कर रही हूँ, चारों ओर शांति शांति है। एक तो आत्मा का स्वधर्म शांति, दूसरा मेरा धाम शांति का धाम, तीसरा मेरा परम पिता वो शांति का सागर। जरा सोचिए तो, किसका पिता करोड़पति हो तो उसका बेटा लखपति तो होगा ना, कम से कम, भले करोड़पति न सही, लखपति तो होगा कि नहीं। एक करोड़पति पिता के घर में बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा होते ही, नामकरण होते ही सबसे पहला काम पिता क्या करेगा, उसके नाम पर बैंक अकाउंट खोल देगा, और कम से कम 1 लाख तो डालेगा, कम से कम, करोड़ों है उनके पास। तो जन्म से लखपति बन गया बच्चा। कैसे बन गया, क्योंकि अधिकारी है बच्चा। तो हम आत्माएं भी परमात्मा के बच्चे हैं, अधिकारी हैं। तो मेरा परम पिता शांति का सागर, मेरा धाम शांति का धाम, मेरा स्वभाव शांति, और मैं शांति की भिखारी बन के शांति मांगो, इसको क्या कहेंगे, अज्ञान। तो राजयोग इस अज्ञान को नष्ट करता है और ये चिंतन देता है कि आप शांति के सागर, शिव पिता की संतान, शांति धाम के वासी, शांत स्वरूप आत्मा हो। तो संबंध जुड़ गया, चिंतन किया, संबंध जुड़ गया, और संबंध जुड़ते ही शक्ति का अनुभव होने लगा। लेकिन इस शक्ति को कायम रखने के लिए फिर तीसरा आधार चाहिए, वो है स्नेह। कई बार संबंध तो होता है पर स्नेह नहीं होता है। पति पत्नी का संबंध तो जुड़ गया लेकिन प्यार नहीं है आपस में, तो क्या होता है। कई बार हमने एक जगह में गई थी, बच्चे वो आए, वो कहते बहन जी आप मेरे मम्मी डैडी को मिलाओ। मैंने कहा क्यों क्या हो गया, तो क्या आपस में बात ही नहीं करते। मैंने कहा क्यों बात नहीं करते, तो कहते पता नहीं क्या हो गया, जब एक दो को देखते ही अलग हो जाते हैं, बात सामने नहीं आते हैं। तो फिर हमने कहा घर में काम कैसे चलता है, तो कहेंगे अब डैडी कहेगा मेरे को, कहेगा जाओ मम्मी को बोलो, मम्मी कहेगी जाओ डैडी को बोलो, अब बच्चे को बीच में भटका देते हैं। आपस में करो ना, बच्चे तो पैदा कर लिए तो बाकी बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहेंगे प्यार नहीं है। क्यों प्यार नहीं है, स्नेह क्यों नहीं है, क्योंकि एक दो के अवगुण देख रहे हैं। शादी से पहले तो गुण ही देखे हम, कभी कभी हंसी में कहते हैं शादी से पहले जब एक दो को देखते हैं तो गुण ही दिखाई देते हैं, तो सुंदरता देखते हैं, तो सुंदरता जब देखते हैं तो कहेंगे तेरा चेहरा तो चंद्रमुखी की तरह, एक जोक है हा? चंद्रमुखी की तरह, पर मान लो वो गुस्से वाली है, मान लो चौक के रूप में लेना, वो गुस्से वाली है, तो कहेंगे कोई बात नहीं तेरे गुस्से में भी प्यार है चंद्रमुखी, चंद्र की, चंद्रमा की शीतलता जो किरणें है वो चांदनी शीतल होती है, पर लाइट तो है ना। फिर शादी हुई तो गुस्सा तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि गुस्से को तो कम नहीं किया, अधिकार भी बना, शादी हुई तो अधिकार भी आता है, तो फिर तो कहेंगे अब तेरा चेहरा तो सूर्यमुखी की तरह है, चंद्रमुखी से सूर्यमुखी बन गया। फिर जब बच्चे पैदा हुए तो अधिकार बढ़ गया, तो फिर तो ज्वालामुखी हो जाता है चेहरा लेकिन इसको आप एक जोक के रूप में लेना, कृपया आपस में चर्चा नहीं करना लेकिन ये कहने का भाव क्या है कि वास्तव में हम मेरा भाव तो कुछ और ही है कि आत्मा वास्तव में इन गुणों की स्वरूप है। जब हम ये बात समझ लेते हैं तो मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, ये हमको समझ लेना है, तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। ये एक मनोविज्ञान है कि जब किसी के गुणों का चिंतन करते हैं तो प्रेम बढ़ता है, और किसी के अवगुणों का चिंतन करते हैं तो नफरत आती है। ये एक मनोविज्ञान है, तुरंत एकदम हट जाएगा। अब क्या होता है, हम परमात्मा के प्रति स्नेह तो व्यक्त करते हैं, कैसे, कीर्तन क्या है, कीर्तन माना क्या, कीर्ति, ईश्वर की स्तुति गाना, ये कीर्ति है, ये कीर्तन है, अर्थात परमात्मा की हम महिमा करते हैं। लेकिन भूल क्या करते हैं, कीर्तन गाते गाते कीर्ति करते करते फिर कुछ मांग लेते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे किसी की महिमा गाते 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 कुछ मांग लिया, इसको बंबई की भाषा में कहते हैं, बंबई की, मुंबई में कहते मस्का लगाना, पोल्सन बटर, पहले पोल्सन बटर आता था, तो पोल्सन बटर क्या होता है, उसकी खूब तारीफ करेंगे, तारीफ करते करते फिर कुछ मांग लेंगे। अब जो बड़े लोग होते हैं ना वो कहेंगे तारीफ करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या काम है, बोलो सीधा ही काम से काम, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तारीफ करता है अगर तो उस वो बड़ा व्यक्ति समझेगा फिर वो कुछ दाल निकाला है, दाल निकाला है माना इसको कुछ मांगना है, लेकिन कैसे मांगे, थोड़ा नरम करेगा ना, क्रीम लगा करके मस्का लगा करके तभी तो कुछ मांग सकेगा। लेकिन परमात्मा के साथ भी हम ऐसा ही संबंध जोड़ते हैं, उनकी स्तुति गाकर फिर कुछ मांग लेते हैं। अरे परमात्मा तो दाता है, वो दाता तो इतना देता है, जिसके लिए गायन है देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, देने वाला नहीं थकेगा, हम लेने वाले थक सकते हैं, लेकिन हम करते क्या है, भिखारी की तरह भीख मांगते हैं। हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासी हम। सागर कहता है अरे मूर्ख बूंद के प्यासी क्यों बनते हो, पूरा सागर पी जाओ ना, किसने मना किया है, तो भी सागर सूखेगा नहीं चाहे कितना भी पी लो, वो तो अथाह है बेअंत है, लेकिन हम बूंद के ही प्यासी बनते। अब ये अज्ञान हो गया, इसीलिए मांगते मांगते भीख भी नहीं मिली, हम ईश्वर से भी दूर तो खुद से भी दूर, अपने गुणों से भी दूर चले गए। तो राजयोग कहता है मांगो नहीं, ये गुण मांगने की चीज ही नहीं है। गुणों का चिंतन करते 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 उसमें खो जाओ, क्योंकि शांति के सागर पिता की मैं संतान भी शांत स्वरूप हूँ, तो शांति मांगो नहीं। पर शिव पिता आप शांति के सागर हो तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, और खो जाओ। इसी को कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये विलीनता की अवस्था राजयोग की अवस्था, इसके विषय में कल मैं आपको बताऊंगी सवेरे के समय, जिसमें कैसे परमात्मा के गुणों में खोना होता है, खुद वो गुण स्वरूप बनकर। अभी क्या है, मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ, हे भगवान मेरे मेरे कमियों को मत देखो, चित पर मत रखो। एक व्यक्ति है रोज गाता रहता है, हे भगवान मैं तो भूलों का सागर हूँ और तुम क्षमा के सागर हो, हे भगवान तुम मेरे भूलों को मत देखो बस क्षमा करते रहो। अब भगवान भी बहुत होशियार है, ऐसे थोड़ी है, वो तो धर्मराज भी है, मैं भूले करता जाऊं और वो क्षमा करता जाए। तो खुद को काम दिया भूले करने का और भगवान को काम दिया क्षमा करने का। आरती में आता है मैं मूर्ख खल कामी पापी, फिर कहेंगे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान को काम दिया पाप हरने का और खुद को काम दिया पाप करने का, ऐसे तो हम करते रहे वो हरता रहे, बस यही धंधा भगवान को दिया है। अब ये तो हम भगवान अपने ऊपर बोझ चढ़ा रहे हैं भगवान का। जैसे एक बच्चा है घर में गंदगी करता रहे और मम्मी को कहे मम्मी तू साफ कर, मम्मी कहेगी मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या, नहीं कहेगी, तुम गंदगी करो और मैं सफाई करूँ, तुम सफाई कब सीखोगे। अगर वो करती रहे और कुछ कहे नहीं तो बच्चा कभी सफाई करना सीखेगा नहीं, माँ बाप सिखाते हैं। तो हम भी पाप करते रहे और वो क्षमा करता रहे तो हम कब सुधरेंगे, क्या सुधरना ही नहीं है, हा? क्या कहेंगे। इसलिए राजयोग कहता है ये कहकर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और भगवान ने माफ किया भी या नहीं किया वो पता कैसे पड़ेगा। केवल कह दिया हमने तो माफ कर दिया क्या, ईश्वर के घर में देर भले है लेकिन अंधेर नहीं है, ये भूलना नहीं। इसलिए ये भी धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। तो क्या करना होगा, हम इतने ऊंचे पिता के बच्चे हैं, अगर हम परमात्मा से केवल अपनी कमियां कमजोरियां ही बता रहे हैं और माफी मांग रहे हैं और कुछ सुधर नहीं रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली परमात्मा का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, हम किसके बच्चे हैं। अगर किसी का बेटा पिता बहुत बड़ा आदमी हो और बेटा नालायक हो मान लो, तो बेटे का ही नाम बदनाम होता है या पिता का भी होता है, हाँ पिता का भी होता है। सबसे पहले आएगा ये किसका बेटा है। एक बार एक किस्सा आया था कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री है, उसका बेटा 16 साल का बेटा कुछ साल पहले एक गंदे नाले में पड़ा हुआ है, खूब शराब पिया हुआ था गंदे नाले में एकदम। तो जब पुलिस ने देखा और मालूम पड़ा ये तो प्रधानमंत्री का बेटा गंदे नाले में पड़ा है, तो उसको फोन किया तो बताइए आप सोचिए उस समय उसकी क्या मनोस्थिति हो गई होगी इतने बड़े प्रधानमंत्री की। चलो लोगों ने पढ़ लिया भूल गए होंगे, लेकिन भारत की एक अखबार ने उसके ऊपर एडिटोरियल दिया कि अगर कोई प्रधानमंत्री अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता है तो देश को क्या संभालेगा। मानो एक ऐसी बात, एक कितनी कितना बड़ा कटाक्ष है। क्यों, क्योंकि बच्चे बच्चा बाप का भी नाम बदनाम करता है। तो अगर हमारे अंदर इस प्रकार के कर्म है तो परमात्मा का भी हम नाम बदनाम कर रहे हैं। जबकि ये कहावत है कि भगवान ने मनुष्य को अपने रूप में रचा, अर्थात जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा के अंदर भी हैं। इसलिए अंश कह दिया या परमात्मा ने मानव को देव रूप में रचा, जैसे कल आपको बताया जा रहा था। तो हम देव आत्मा के रूप में थे, हम अभी भिखारी बन गए, कहां देव आत्मा थे। अब शिव परमात्मा कहता है, कहते हैं कि अब वो सच्चा स्नेह ही खत्म हो गया, केवल स्वार्थ आ गया है। स्वार्थ के साथ साथ हम भगवान से भी सौदा करने की कोशिश करते हैं, हे भगवान तू मेरा इतना काम कर दे तो मैं तुम्हारे तुमको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, हे भगवान मेरा ये काम कर देना। तो भगवान ने काम किया तो 100 रुपए का प्रसाद चलो चढ़ाया, और नहीं किया तो हाँ? नहीं चढ़ाएंगे प्रसाद, नहीं चढ़ाएंगे, भूखा रखेंगे। तो क्या हमारे प्रसाद का वो भूखा है क्या? वो तो भावना का भूखा है। परमात्मा के लिए क्या कहते, भावना का भूखा और प्रेम का प्यासी। तो प्रेम तो है ही नहीं, ये तो स्वार्थ हो गया। और भगवान को जो 100 रुपए का मैं प्रसाद चलो चढ़ाती भी हूँ, ये 100 रुपया है किसका? आरती में हम ये भी तो कहते हैं ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये आरती के समय ही सब ईश्वर का और बाकी समय सब मेरा है क्या? कि हर वक्त तेरा है ईश्वर का, क्या कहेंगे? इसमें आरती में जोड़ दो ना कि हे भगवान आरती के समय सब कुछ तेरा, बाकी समय सब मेरा, तेरा भी मेरा, मेरे हाथ न लगा, ऐसे नहीं। इसीलिए वो प्रेम जो स्नेह कहते 2.5 अक्षर का ये शब्द है, बाकी पोथी पढ़त पढ़त पंडित कोई नहीं बन सकता, कि वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले तो पंडित हो जाए। तो ये 2.5 अक्षर प्रेम के क्या होते हैं? ये 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब केवल लिखना नहीं, प्रेम ये 2.5 अक्षर है, या प्यार 2.5 अक्षर है, या स्नेह 2.5 अक्षर है, ये बात नहीं है। प्रेम अर्थात परमात्मा के गुणों का इतना गायन करे, इतना गायन करे जो ताकि उस प्रेम में हम खो जाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इन लव, खो जाएं। दुनिया में जो इंग्लिश की परिभाषा है ना, उसमें क्या कहते हैं, लॉस्ट इन लव नहीं कहते, फॉल इन लव। किसी से किसका प्यार कहेंगे, फेल इन लव, व्हेन सो फेल इन लव, माना वो प्रेम में गिर गया। वो तो गिरते ही है, जो देहधारियों का देहधारियों से प्रेम है ये तो गिराएगा। दिल क्या देते हैं, दर्दी लेते हैं, ये कहेंगे। कई लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानती है, वो तो कहेंगे भगवान मेरे दिल में है, ये तो कहते भगवान तो परमधाम में रहता। हम कहते हैं क्यों नहीं हम उनको सर्वव्यापी मानते, मानते इतना मानते हैं, इतनी भावना है जो हम एक पल भी उनको अपनी आंखों से दूर नहीं करते। कहां भी जाएंगे हम कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझते, यही कहेंगे शिव बाबा मेरे साथ है। क्या कहते हैं? शिव बाबा मेरे साथ है, तो दूर थोड़ी है। जिनसे प्रेम होता है उनको आंखों में समाया जाता है, जैसे मीरा की आंखों में गिरधर था, तो श्री कृष्ण को सब जगह देखते देखते आंखों में कृष्ण था। जो आंखों में होगा वही सब जगह दिखाई देगा, हरा चश्मा है तो हरा दिखाई देगा, लाल होगा तो लाल दिखाई देगा। इसलिए बच्चे के लिए कहते हैं माँ की आंख का तारा है, आंख की का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा है तो जहान है माँ के लिए। या तो दिल का या जिगर का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है, जिसे प्यार होगा उसको दिल में समाएंगे। परंतु जिसने भगवान को दिल में समा दिया, याद रखना फिर किसी और को दिल में नहीं समाना। अगर किसी और को भी दिल में जगह दे दी तो वो गीत याद आता है, दिल के टुकड़े 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ऐसा दिल बनाना है क्या जो 1000 टुकड़े वाला हो जाए? ये तो ये सारी भावना की बातें हैं। परमात्मा को से इतनी प्रीत रखें जो और कोई मेरे दिल में बसा हुआ न हो, क्योंकि ये भावना का स्थान जरूर है, हृदय प्रेम का स्थान है, परंतु ये भावनात्मक बातें हैं। और ईश्वर से भी इतना प्रेम हो, मेरा इतना प्रेम हो जो उनके गुणों में मैं खो जाऊं, ये इसके बारे में मैं और आगे आपको कल बताऊंगी। तो तीसरा आधार है स्नेह, और वो स्नेह कैसे बढ़ता जाए, जब उनके गुणों का चिंतन करते 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 कुछ मांगे नहीं, कोई सौदा नहीं करे, लेकिन उन गुणों में खो जाए, ये प्रेम है, सच्चा प्रेम। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां प्राप्ति है वहां पर तो मन और कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। जिससे कुछ प्राप्ति हुई है हम उनका एहसान कैसे भुला सकते हैं? अगर भुलाए तो ये तो हम अपने आप को या उसको भी धोखा दे रहे। तो भगवान ने इतना हमें दिया है, उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? इसे कदम कदम पर शुक्रिया, धन्यवाद, ये जैसे हम करते रहेंगे, क्योंकि उनका ही दिया हुआ है तो उनके प्रेम में हम खो सकते हैं। तो फिर ये नहीं कहना होगा कैसे मन लगाएं, लेकिन एक घड़ी के लिए भी उनको भूलेंगे नहीं। अब ये है राजयोग। जीवन ही योगी बन जाएगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है, परंतु कहीं भी फंसना नहीं है, क्योंकि योग एक परमात्मा के साथ है। और सब कर्तव्य करते हुए, निभाते हुए मन की तार एक ईश्वर से जोड़नी है, ये राजयोग है।